ग्लानिर्भवति भारत अद्युतानं अधर्मशः तदात्मानं सृजाम्यः परित्राणाय साधुना धर्म संस्थापनार्थाय शम्भवामि युगे युगे शम्भवामि युगे युगे हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैर्केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
कृष्ण स्वागत है आप सबका इस हमारे साप्ताहिक श्री कृष्ण भावनामृत कार्यक्रम में और एक बार पुनः आपको मैं आज का मंगल दिवस शुभ और मंगलमय हो भगवान से यही निवेदन करता हूं। और आइए हमारे मंदिर जो कि 1229 रिवाइल हाईवे पर है, हर रविवार को वहां पर विशेष पब्लिक प्रोग्राम होता है जो 11:30 बजे भजन कीर्तन से शुरू होता है और 12:30 बजे भगवान की आरती होती है। आरती के बाद में 1 घंटे का प्रवचन होता है और आज हमारे समक्ष में परम पूज्य वीर कृष्णा गोस्वामी जी है, वो आज हमारे प्रवचन करेंगे 1 से 2 बजे तक। उसके बाद में गुरु पूजा का हमारे संस्थापक आचार्य परम पूज्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी सुला प्रभुपाद का और 2:30 बजे प्रसाद वितरण के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। आइए आप सब आकर के हमारे संग हम मिल करके देखिए भगवान की दर्शन कीजिए और उनके कथा को श्रवण कीजिए। मानव जीवन की प्राप्ति अनेक पुण्यों का फल है। इस मानव जीवन को प्राप्त कर यदि सत्य कर्म नहीं किया जाए तो यमराज की पुरी में जाकर कष्टों की प्राप्ति होती है। पुत्र को अपने माता पिता की मृत्यु पर्यंत की क्रिया करना परम आवश्यक, यों पुनीत होते हैं। पुत्र पौत्र आदि के पुण्य पुत्र वह है जो पुनम नामक नरक से माता पिता का उद्धार करता है। श्राद्ध आदि करने से प्रेतेश्वर प्रसन्न होते हैं। पुत्र पौत्र आदि के पुण्य आदि के करने से जो आनंद पितरेश्वरों को मिलता है पितरे को मिलता है वह अवलौकिक है। इन सभी का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। दान आदि की महिमा का भी वर्णन, महत्व का भी वर्णन इस पुराण में बड़े विस्तार के साथ मिलता है। गरुड़ पुराण का श्रवण अपने तथा पूर्वजों का उद्धार के लिए है, अतः पुण्य कर्म की साधना परम अपेक्षित है। धार्मिक वचनों में श्रद्धा, गुरु अवस्था, ज्ञान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान आदि सभी में गरुड़ पुराण की कथा का श्रवण परम आवश्यक है। तो चलिए आज से मैं इस प्रोग्राम में गरुड़ पुराण की कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। गरुड़ पुराण वेदांत दर्शन से ओतप्रोत है। ईश्वर की शक्ति अपार है, वह शक्ति है माया, जिससे ईश्वर अज्ञानियों के लिए अदृश्य रहता है। गरुड़ पुराण के वचन अमृत वचन है, जिसके अनुसार आचरण करने से प्राणी भवसागर से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो अयोमुदीर्येत। श्री वेद व्यास जी गरुड़ पुराण की रचना से पूर्व ग्रंथ की निर्हित समाप्ति के लिए मंगलाचरण में भगवान मधुसूदन की वृक्ष रूप कहकर स्तुति करते हैं। एक समय एक कथा वहां पर होता है, जब 88,000 ऋषियां नैमिषारण्य में उपस्थित होकर के कलयुग की प्रक्रम की शांति के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए यज्ञ स्थापन किए थे। तो एकदा तु मुन्य प्रातःहूर्त हुता अग्नयः सत्य कृत्यम सूत माम सीनम प्रच्छुत अर्दे मदारता। जब एक समय प्रातः काल के सुहावने समय में समस्त ऋषियां पवित्र अग्निहोत्र कर चुके, तो वहां आए हुए श्री सूजी महाराज का परम सत्कार किया और आदर सहित उनसे पूछने लगे। ऋषि बोले, हे सूच जी, अपने सुख देने वाले देवताओं के प्रकाश में मार्ग का तो भली भांति आपने वर्णन किया है, आप कृपा करके यम मार्ग का भी वर्णन कीजिए, जो अत्यंत भय देने वाला है, उसे हम लोग सुनना चाहते हैं। साथ ही संसार के दुख तथा उन दुखों के नाश करने का उपाय भी कहिए और यह भी बतलाइए कि जीव इस लोक में किस प्रकार दुख उठाता है और तथा उन दुखों के नाश करने का उपाय भी कहिए, या भी बताइए कि जीव इस लोक में किस प्रकार दुख भोगते हैं और परलोक में जाकर किस प्रकार दुख पाते हैं, यथा रीति इन सब का वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि महात्माओं, अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का मार्ग कहता हूँ, सुनिए। जो पुण्यात्मा पुरुष के लिए सुखदायक है और पापियों के लिए अत्यंत दुखदायक है। ऐसा ही प्रश्न एक बार गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से किया था। श्री भगवान ने उनको जो बताया, वही तुम्हारे संदेहों को दूर करने के लिए मैं कहता हूँ, सुनिए। एक समय गुरु स्वरूप श्री हरि भगवान वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान थे। उनके पास अत्यंत नर्मता पूर्वक श्री गरुड़ जी पहुंचे और हाथ जोड़कर पूछने लगे। गरुड़ जी कहते हैं कि हे भगवान, भक्ति मार्ग का विधिवत वर्णन कर दिया आपने, हे देव, भक्त जनों के उत्तम गति भी सुना दी, अब मैं महाभयानक यम मार्ग सुनना चाहता हूँ, जिस पर आपकी भक्ति से विमुख जीवों का गमन होता है, ऐसा सुना गया है। सुगमन भगवान नाम जीवाम ना वशवर्तिनी तथापि नरक यान्ति वि... विगद दिगदस्तु नाराधनमान अतो मे भगवान ब्रूहि पापी नाम यह गतिम भ्रवते यम मार्गस्य दुखानी यथा ते प्राप्नुवंती देवे। हे प्रभु आपका नाम जप अत्यंत सुगम है क्योंकि नाम लेने वाली वाणी तो आपके अधीन ही है। फिर यम मार्ग में से बचाने वाले आपके नाम को नराधम नहीं लेते हैं और नरक में पड़ते हैं। ऐसे पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। इसी कारण से हे भगवान पापियों की जो गति होती है या यम मार्ग में पाप आत्माओं को जो जिस प्रकार से दुख उठाने पड़ते हैं उन सब को कृपा करके सुनाइए। श्री भगवान बोले हे पक्षीराज सुनिए तुम्हें इस मार्ग में पाप आत्माओं के जिस प्रकार गमन होता है वे जैसा दुख उठाते हैं वे जिस नरक में जाते हैं वह सब सुनाता हूँ और जो सुनने वालों को अत्यंत भयंकर होता है। ये तक्षार्य जो पुरुष दया धर्म यों वर्णाश्रम धर्म से रहित होकर के सदा पाप करते हैं दुष्ट पुरुषों का संग करते हैं श्रेष्ठ शास्त्र वेद पुराणों की आज्ञाओं को सदा विमुख रहते हैं अपने आप को माननीय समझकर अकड़ते हैं धन मान और मद और से चूर होकर के अभिमान करते हैं काम क्रोध लोभ आदि के कारण असुर वृत्ति में पड़े हुए दैवी संपत्ति से दूर हटे रहते हैं पराई स्त्रियों या पराई धन का हरण करने वाले के लिए विक्षित होकर के अनेकों प्रकार से सोचते हैं स्त्री पुत्र कलत्र आदि से मोह ममता में पड़ते रहते हैं काम भोग के सिवा जिन्हें अन्य कुछ नहीं सुहाता ऐसी पाप आत्मा अपवित्र नरक में पड़ते हैं। और जो पुरुष ज्ञानवान होकर सदा दुष्कर्मों से बचे रहते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पाप आत्मा मनुष्य इस लोक में अनेक दुख भोगते हैं और अंत में यम यातना पाते हैं। पापी पुरुषों के इस लोक में जिस प्रकार दुख प्राप्त होते हैं हे गुरु उसे ध्यान दे करके सुनिए। फिर दुख भोग भोग कर जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं और जिस प्रकार से यम यातना पाते हैं वह भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान विष्णु आगे कहते कि अच्छे अथवा बुरे जो भी कर्म जीव ने पहले जन्म में किए हैं उन्हीं के अनुसार बाल्यावस्था और तरुण अवस्था में यानी कि बाल्यावस्था और जवानी में सुख दुख भोग कर अंत में वृद्धावस्था बुढ़ापे में कर्म योग के कारण उसे कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। उस व्याधि उस बीमारी से मानसिक पीड़ा भी साथ ही उत्पन्न हो जाती है अतः वह महान दुख उठाता है। फिर भी जीते रहने की आशा उसे उत्साह देती रहती है किंतु काल ऐसा बली है कि बिना सूचना दिए ही मूषक पर सर्प के झपटे के भांति उस जीव को दबोच लेता है। ऐसी दशा में भी उसे किसी प्रकार का घर गृहस्थ में वैराग नहीं होता जिनका वह पालन करता रहा है उन्हीं के आश्रित हो बुढ़ापे यूं बीमारी से कुरूप होकर मृत्यु के मुख में पड़कर भी घर पर पाले हुए कुत्ते के समान छोटी छोटे से रोटी के टुकड़े के लालच में उसी घर में रहने की आशा लिए हुए अपमान से वहीं रहना चाहता है चाहे उसे रोटी का टुकड़ा बीमारी के कारण उसे पछता भी नहीं हो खाना पीना चलना फिरना सब कुछ कम हो गया हो वायु के दबाव से पर आंखें निकल आई हो कफ के बढ़ जाने के कारण नाड़ियां बंद हो चुकी हो खांसी और श्वास चलने के परिश्रम से कंठ में घुर घुर का शब्द होने लगा हो संतप्त बंधु बांधों से गिरा हुआ काल के जाल में पड़कर उन बंधुओं के से कुछ बोलने कुछ बोलने पर भी बोल नहीं सकता है, जिससे जिसने समस्त आयु अपने कुटुंब के पालन में खोई है, काम वासनाओं में सदा लिप्त रहा है, जिसने कभी अपनी इंद्रियों को नहीं जीता, ऐसे पुरुष मरते समय सौ बिच्छुओं के काटने के समान वेदना को भोगता हुआ मूर्छित होकर अपने भाई बंधुओं के रुदन करते करते प्राण त्याग करते हैं। मृत्यु के समय ये गरुड़ ऐसा विलक्षण होता है कि दृष्टि दैवी हो जाती है, जिससे वह जगत इस एक स्वरूप दिखाई देने लगता है। मुंह से कुछ बोला नहीं जाता, सब इंद्रियां नाश हो जाती है, चेतना जाती रहती है। ऐसे समय यमदूतों के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। पापात्मा के प्राण दुख बहुत दुख देकर के निकलते हैं। एक क्षण का समय भी उनके लिए कल्प के समान बीतता है। वह पापी सौ वृक्षों के काटने के समान पीड़ा को मृत्यु के समय अनुभव करता है। मृत्यु के समय मुंह पर झाग की झाग फैल जाता है, लार निकलने लग जाती है। इसी प्रकार पापी के प्राण वायु अधो द्वार से निकलते हैं। वहां उस समय यमराज के दो महाभयानक दूत क्रोध से लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें निकाले हुए नंगे हाथ में यमपाश यानी बांधने की रस्सी और मारने को दंड लिए तीखे नुकीले दांतों से कट कट शब्द करते हुए लंबे लंबे ऊंचे उठे हुए बालों वाले काक पक्षियों कौवे पक्षियों के समान अत्यंत काले क्रूप टेढ़े मेढ़े मुंह वाले हाथों पैरों के बड़े बड़े नुकीले नाखूनों को हथियार की भांति दिखा दिखा कर डराते हुए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पापात्मा के दुखी हृदय में अत्यंत डर लग जाता है और डर के मारे पेशाब निकल जाता है। उस समय अंगूठे के समान जीव का हाहाकार करता हुआ ज्यों ही शरीर से निकलता है, झट उसे दोनों यमदूत पकड़ लेते हैं। यद्यपि वह अपने घरियों भाइयों की ओर भी इस महान दुख में छुटकारा दिलाने के लिए व्याकुल होकर देखता है, किंतु उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। इस प्रकार इस लोक के दुखों को का वर्णन करके अब इन पापात्माओं के परलोक दुख का वर्णन करते हैं। तब उस पापी जीव को यम यातना भोगने योग्य शरीर मिल जाता है, जिससे प्रवेश करते हुए जट यमदूत बलपूर्वक बांध लेते हैं और हाथ में पाश लिए रस्सी लेकर के चल पड़ते हैं। दंड से उसे पीटते हुए यह राजपुरुषों यानी कि सिपाहियों की भांति ले जाते हैं। मार्ग में उसके थक जाने के की कोई चिंता नहीं है उनको, बल्कि वे उन्हें उसे खूब पीटते हुए नरकों के तीव्र दारुण दुखों का वर्णन करते हुए घसीटते ले जाते हैं। यमदूत कहते हैं, अरे पापी दुष्ट आत्मा शीघ्र चल, हम तुझे यमालय लिए जा रहे हैं, वहां तुझे कुंभी पाक आदि नरकों में पटकेंगे, देर मत कर। यमदूतों के ऐसे कठोर वचन अपने भाई बंधुओं के रुदन को सुनकर वह पाप आत्मा ऊंची आवाज से हाहाकार करता विलाप करता है और ऊपर से यमदूतों की ताड़ना होती है। यमराज के दूतों का वचन सुनकर और बंधुजन के रुदन सुनकर ऊंचे स्वर से विलाप करते हुए तब उनको यमदूत ताड़ना देते। दोनों यमदूतों की ताड़ना तर्जना से उस पापात्मा का हृदय फट जाता है, खूब कांपता है। रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते आकर काटते हैं और मांस की बोटियां निकाल कर खा जाते हैं। तब वह पापी अत्यंत दुखी हो पहले किए हुए पापों को याद करता है, भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो जाता है और ऊपर सूर्य की तीक्ष्ण किरणें पड़ती है। मार्ग में अग्नि के समान बालू जहां तहां पड़ी हुई पैरों से को जलाती है। वह अत्यंत कष्ट पाता हुआ चलता है, पीठ पर चाबुक पड़ते हैं, मार्ग में ना विश्राम लेने के स्थान है ना जल दिखाई देता है, कदम कदम पर गिर पड़ता है और कदम कदम पर मूर्छित हो जाता है, फिर उठ खड़ा होता है। इस प्रकार उस पापी जीव को फिर अंधकार में मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। यमदूत 99 योजन यानी कि 712,000 माइल्स का रास्ता तय कर उस पापी जीव को 3 या 2 मुहूर्तों में यमलोक से में खींच ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वे दूत उसको अत्यंत घोर नरक यातनाएं दिखाते हैं। तब वह पापात्मा पुरुष बहुत भयानक यम यातनाओं को देखकर यमराज की आज्ञा से दूतों द्वारा आकाश मार्ग से फिर मुहूर्त मात्र के लिए तत्काल घर लौट आता है। वह फिर घर लौटता है, घर की वासनाएं उसे जकड़े रहती है, उनमें बंधा हुआ वह जीव अपने घर आकर के फिर शरीर में प्रवेश करना चाहता है, किंतु यमदूत उसे रस्सी से बांधे रहते हैं, हिलने भी नहीं देते। अपने इस दशा को देखकर वह रोता है और भूख प्यास से दुखी हो जाता है। पुत्र आदि संबंधी उसे पिंड दान करते हैं और अंत समय दान भी देते हैं, किंतु यह सब उस पापात्मा की तृप्ति नहीं करा सकती। अंत समय का दान भी देते हैं कि अंत समय का दान वर्ष भर के पिंड श्राद्ध जलांजलियां आदि कुछ भी पापात्मा जीवों के तृप्ति नहीं करा सकते। इसलिए हे गरुड़, वे पापी पिंड दान आदि ना पाकर भूख से व्याकुल होकर यमलोक को चले जाते हैं, और जो पिंड दान आदि से तृप्ति नहीं किया, मरने के अनंतर जिनके लिए पुत्र आदि संबंधी पिंड दान अन्न दान कुछ नहीं करते हैं, वे पाप आत्मा जीव मरकर प्रेत रूप में हो जाते हैं और एक कल्प तक अत्यंत दुखी हुए निर्जन वन में भ्रमण करते हैं, क्योंकि 100 करोड़ वर्ष बीतने पर भी भोगे बिना कर्मों का नाश नहीं होता। पापी जीवों को यम यातना का पूर्णतया भोग किए बिना मनुष्य जन्म नहीं मिलता, यानी कि हमारे कर्मों को हमें पूरा पूरा भोगना पड़ता है, नहीं तो हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। इसी कारण गुरु जी मरने के पश्चात उसके पुत्र अथवा संबंधियों को चाहिए कि उनके लिए 10 दिन तक प्रतिदिन पिंड दान करते रहे। यह पिंड केवल मृतक को ही नहीं किंतु उसके प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं, उनमें से 2 भाग 5 महाभूतों से बने हुए देह की पुष्टि के लिए बढ़ जाते हैं। उनका जो शरीर मिलता है, नया शरीर मिलता है, उसके पुष्टि के लिए बन 2 पिंड उसको उसमें चले जाते हैं। 3रा भाग यमदूतों का होता है, 4था भाग जो होता है वह प्रेत की प्राप्त होता है, यानी मरे हुए पुरुष को। 9 दिन पर्यंत पिंड दान करने रहने से प्रेत के लिए पिंडज शरीर बनता है, नया शरीर जो पिंडों से बनता है। 10वें दिन में पिंड दान से उसे पिंड शरीर में चलने फिरने की सामर्थ्य आती है। पहला शरीर अग्नि में भस्म हो जाता, फिर पुत्र आदि बंदियों के दिए हुए पिंडों से पिंडज शरीर उत्पन्न होता है। यह शरीर एक हाथ कर होता है, इसी द्वारा वह जीव यमलोक के शुभ अशुभ फल भोगते हैं। जो नया पिंड शरीर मिलता है उससे वो यम की यातनाएं भोगते हैं। पहले दिन के पिंड से पिंड शरीर का सिर और मस्तक बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा यानी गर्दन यो स्कंद बनते हैं, तीसरे से हृदय और चौथे पिंड से पृष्ठ भाग पीठी, इसी प्रकार 5वें से नाभि, 6ठे से कटी और गुहा, 7वें पिंड से जंगा उत्पन्न होती है, 8वें दिन के पिंड दान से जनु होते हैं, 9वें पांव कि में पांव बनते हैं, 10वें दिन के पिंड से दान पिंड के दान से क्षुधा यानी तथा तृष्णा भूख प्यास उत्पन्न होती है। इस प्रकार पिंडज देह को पाकर वह भूख प्यास युक्त एकादशम तथा द्वादश पिंड को पिंडों को भोगता है। इसके अनंतर वह प्रेत तेरहवीं के दिन बंधे हुए बंदर के भांति बंधा यमदूतों के साथ अकेला यम के मार्ग से यमलोक जाता है। हे गरुड़, यह यमलोक के मार्ग का वर्णन सुनिए। यम मार्ग वैतरणी नदी को छोड़ करके 86,000 योजन का है, 86,000 योजन का है। या वह प्रेत 200 योजन के हिसाब से प्रतिदिन 200 योजन 1600 एक योजन 8 माइल के मील होता है हिसाब से प्रतिदिन चलता है। इस प्रकार 43 दिन में यमलोक पहुंच जाते हैं। मार्ग में 16 पूरी पार करके वह पातकी यमराज के भवन में जाता है। 16 पुरियों का नाम क्रमशः ये है, सौम्य, सूर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलगाम, कौचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, भवापद, दुखद, नानाकंद्रन, सुप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीतहृदया, बहुभीति, यमपुरी। इन 16 पुरियों में को पार कर आती है। मार्ग में वह पाप आत्मा यमदूतों द्वारा यम पासों से बंधा हाहाकार करता है। अपने घर को छोड़ इसी प्रकार होते होते यमपुरी में पहुंच जाते हैं। अब फिर अगले सप्ताह सुनेंगे कि यमपुरी में क्या आगे क्या होता है।
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा
No.